की जय। भक्त विघ्न विनाश शंकर नृसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविष्णुप्रद गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मदेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। जय राधा दामोदर व्रत की जय। कार्तिक व्रत नियम सेवा की जय। जय उद्देश्वरी मदेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवी गण की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रमानंदी हरि हरि बोल। आज प्रभुपाद जी के पार्षद भक्त श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महामहोत्सव कार्तिक मास दामोदर मास। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि भक्तों के साथ जुड़ने के लिए कुछ कृपा करके वो लोग अपना उपाय निर्णय करके रखा। क्योंकि आविर्भाव तिथि जगत में उतरने का होता है। आए तो इस जगत में महाप्रभु की इच्छा से प्रभुपाद जी के पार्षद बन करके बहुत महाभागवत जन आए हैं। तो इनके पहले नाम था, प्रभुपाद जी ने दिया था सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। जब हरिनाम दीक्षा लिया तो प्रभुपाद जी ने उनको मायापुर में हरिनाम दीक्षा देकर के उनको शुरू से ही प्रचार के लिए आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया। तो वो भक्ति विवेक भारती महाराज जी के साथ, प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य, उनके साथ सब समय प्रचार में जाते। भारती महाराज स्वयं उनको आगे करके हरि कथा कीर्तन करने के लिए उनको आदेश देते। वो ऐसे हरिकथा कीर्तन करते, कहते हैं कि जड़बद्ध जीव साधन भजन कुछ जानता नहीं या भक्ति के कुछ भी जानते नहीं, समझते नहीं, किंतु उनके नाम प्रभुपाद जी ने दिए सिद्ध स्वरूप, वो जीवों को प्राणी मात्र को अपने स्वरूप में पहुँचाने के लिए हैं उनके अंदर सामर्थ्य था। वो किसी को भी देखते देखते उनका कांटा कहाँ है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सुधारा जाए। और देर नहीं करते, जिसको देखेंगे उसका कहाँ अनर्थ है, कहाँ वो फंसे हुए हैं, बस वहीं उनको सफाई सुथरा करना है। जैसे डॉक्टर या वैद्य और नाड़ी नबस देख करके या परीक्षा करके तो उनके बीमारियों को पकड़ लेता है, ऐसे महाराज जी कैसे थे। पहले ही और यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ के आए थे, तो वो कानूनी सब नियमों को जानते थे, किंतु वो लॉ पढ़ना प्रभुपाद जी कहते थे उसको कहते हैं जो लॉ पढ़ता है उसको लायर बोलते हैं, कोई को प्लीडर बोलते हैं, हैं, वकील बोलते हैं, वकालत करने वाला, बोले तुम्हारा ये वकालत किसी काम का नहीं है, लायर बनने से काम नहीं चलेगा। हैं, यदि जीव को अनर्थों से मुक्त करके भगवत चरणारविंद में तुम पहुंचा सको तब यही तुम्हारा भजन है। कहते हैं मैं तुमको हरिनाम दीक्षा दे दिया, सिद्ध स्वरूप नाम दे दिया नहीं, तुम सबको सिद्ध स्वरूप देने की तुम्हारे पास सामर्थ्य है। इसको बोलते हैं सिद्ध प्रणाली। एक होता है साधन प्रणाली, क्रम मुक्ति मार्ग, एक सद्य मुक्ति मार्ग। ये सबके लिए संभव नहीं है कि किसी को देख लिया, पकड़ लिया, उनके बीमारी से मुक्त कर दिया, स्वस्थ कर दिया, हाँ, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना, ये साधारण बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभु जी ने कहा यदि वैष्णव को आदर करना सीखोगे, परिचर्या करना सीखोगे, हाँ, तो गुरु कृपा वैष्णव के माध्यम से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और गुरु का परिचर्या करने से भगवत कृपा तुम्हारे अंदर हाँ आ जाएगा। किंतु ये जो जीव प्राणी मात्र को हाँ कैसे उद्धार करना है, कहते हैं वो जीव मात्र को भगवत सेवा का अधिकार कैसे देंगे, कहते खुद यदि आचरण करोगे, सेवा करोगे, तो वो सेवा का अधिकार दे सकते हैं। बस अब क्या हुआ, प्रचार में गए बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में, और साधु लोग गांव गांव में तो जाते हैं, किंतु शहरों में जाते हैं तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े समाज के मुख्य स्थान हैं वहाँ पर जाकर के डेरा तंबू डालते हैं। तो वहाँ कॉलेज में 7 दिन के लिए प्रचार कथा का व्यवस्था हुई, तो भारती महाराज जी ने उपाचार्य के लीडर थे, उन्होंने बोला सिद्ध स्वरूप अब तुम भाषण देना है, तुमको भाषण देना है। उन्होंने शुरू कर दिया, जितने प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टूडेंट्स, स्नातक जितने थे, बहुत बड़ा सभा गैदरिंग है, उसमें सबसे पहले ही बोले भारतवर्ष को ध्वंस करने के लिए हैं साधु के भेष बना करके जैसे ठग और दुष्ट दानव हैं मानव के रूप में जगत में आए हुए हैं, लोए साधु वेश आने उपदेश ये तो मायार रंग, अर्थलाभ यही आसे कपट वैष्णव वेशे ढोमिया बुलाए घरे घरे, बोलते साधु का वेश बना करके कपटी धूर्त अर्थ का लालची घर घर में भ्रमण करते हैं, और लोगों ठगते हैं, आत्मज्ञान दे नहीं सकते, आत्मनिश्रम में प्रवृत्ति नहीं कर सकते, ऐसे ये मानव नहीं है, ये दानव है, ठग है। फिर उन्होंने बोला, सबसे पहले उदाहरण दिया, ये जो रामकृष्ण मिशन है एकदम सीधा, छिपा करके नहीं, इधर उधर से नहीं, बोले ये सबसे बड़ा ठगों का अड्डा है, दानवों का अड्डा है, साधु का वेश बनाया, मुड़मुड़ाया, लाल कपड़ा पहन लिया, और मुर्गी मिशन है, बकरा मिशन है, भेड़ है, हाँ, और सुअर है, मछली है, 7 दिन में जितने पशुओं की बलि होती है, हैं अब पशुओं का मांस खाना है। वो लोग बोलते हैं गीता भागवत पढ़ के क्या होगा, आज फुटबॉल खेलो, वो बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद, जो तुम्हारा शरीर नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहा, इन्होंने अब खंडन करना शुरू कर दी, हैं ये शरीर कब तक रहेगा, कितना पालोगे इसकी, तो आज करोगे, जो आत्मज्ञान नहीं है ये चोला कब तक रहेगा, बस, और वहाँ जैसे भाषण शुरू किया और कितना गंभीर भड़क उठे सब पब्लिक और प्रिंसिपल प्रोफेसर हैं, एकदम आग लग गया, अब कोई शांत नहीं होने वाला। भारती महाराज ने प्रभुपाद जी को टांकर बुक किया कि सिद्ध स्वरूप ने हमारा सब प्रचार नष्ट कर दिया, ऐसे भाषण देना शुरू कर दिया, आग लगा दिया, पेपर में सब जगह में छा गया, पब्लिक सब भड़क गए। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहते हैं मेरा लाखों की करोड़ों की प्रचार कर दी, अब सब लोग जान गए गौड़ीय मठ क्या है, सत्य के वक्ता है, निर्भीक है और चापलूसी या तुआज करने वाले नहीं है, चमचागिरी किसी का करते नहीं, मितंश सारंश बाचे बगमिता, सत्य बोलेंगे अप्रिय सत्य है तभी बोलेंगे। तो बोले मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयारी करो और यदि किसी को प्रश्न है तो मेरे पास करेगा। भारती महाराज जी ने दूसरे दिन सभा बुलाया, देखा उससे भी अधिक श्रोता आया, जितना आए थे उससे डबल ट्रिपल आ गया है, और उनके पास प्रश्नों की घड़ी है, झड़ी है। उन्होंने बोला खट्टंग राजा ने कितना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया पृथ्वी धूलिकाना भी कम हो गया, इतना बोली चढ़ाया, आखिर में नारद जी आए, आखिर में महाराज ऋषि महर्षि सब रहे इकट्ठे करके, बोले महाराज आपने बहुत यज्ञ करा ना, बहुत दान पुण्य करा, उसका फल आपको मालूम है क्या होगा, बोले क्या होगा, बोले यज्ञ किया नहीं आपने, आपने कितना बड़ा पाप और अनर्थ किया, ये यज्ञ में जो बोले दिया कितने प्राणियों का हिंसा किया, क्या होगा, तो क्या होगा, अब उन्होंने हाथ में जल लेकर के छिड़काव कर दी, अर्थात दिव्य नेत्र दे दी, अब क्या देख रहा है, कतार से लाइन से सब खड़े हैं, सबके हाथ में तलवार हैं, छुरा चाकू हैं, सब लेकर खड़े हैं, और खट्टंग महाराज चलते जा रहे हैं और उनको छुरा चाकू भूक रहा है, गला उतर रहा है, दर्द के मारे छटपटा रहा है, अब तो जाने का रास्ता नहीं, न इधर न इधर, सब घेर कर खड़े हैं। तब और चित्कार कर रहे हैं, उसमें नारद ऋषि को भी देख रहे हैं, ऋषियों को भी देख रहे हैं, और उनको होश आया, प्रार्थना करने लगे, मुझे बचाओ, मुझे एक बार बचाओ। तो जब प्रार्थना करने लगे तो नारद ऋषि कहते हैं, देखो पाप बाप को भी नहीं छोड़ता है, गलत किया तो भोगना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है कि पाप किया पुण्य करेंगे तो पाप चला जाएगा, या पुण्य करेंगे तो पाप चला जाएगा, या पाप करेंगे तो पुण्य चला जाएगा, दोनों तराजू के दो प्लेट है, जो कुछ किया अपने करनी अपने भरनी, भोगना पड़ेगा। उस समय बहुत छटपटा रहे हैं, कहते देखो ये आत्मा बड़े सूक्ष्म है, किंतु आत्मा के ऊपर दो आवरण, सूक्ष्म स्थूल आवरण के द्वारा आत्मा को घेर रखा है, ये स्थूल आवरण में जितने आत्माओं को सताया आज तक, ये आकर के प्रवेश करेगा और ऐसे सताएगा कितने कीड़े मकोड़े, वो क्या है, सब जीवात्माएं हैं, एक शरीर के अंदर प्रवेश किया, वो हमने किसी का आँख उखाड़ा आँख के अंदर घुस जाएगा, खाएगा आँख को, किसी कान फटाया तो मारा तो कान में घुस जाएगा, और खोपड़ी फोड़ा तो खोपड़ी में घुस जाएगा, वो आत्मा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चेतन है आत्मा, आत्मा जड़ नहीं है। आपने आत्मा को दुख दिया, किसी का आत्मा को बेबात की, कोई मतलब नहीं है। पशु ने तो तुम्हारा बिगाड़ा नहीं कुछ, इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको भगवान के चरण तक पहुंचा दी, बलि दिया तो क्या करते हैं, बलिबद्ध उसके शरीर को लेकर के हिस्सा बांट करके उसको हम अपना भोजन पकाते हैं। उस आत्मा को तो प्रभु तक पहुँचे या नहीं, हमारा भोजन के लिए हम किसी को हत्या करते हैं, मारते हैं। तुम सोचो, खट्टंग महाराज जी को ऋषि लोग कह रहे हैं, सोच लो इन बातों को, ये तो अभी तुमको काट रहे मार रहे हैं, किंतु ये आत्मा फिर तुम्हारे अंदर में जाकर, जितना खून तुमने पिया, मांस खाया, इतने मांस और खून इससे 10 गुना तुम्हारा खाएगा, तब तो पता पड़ेगा। जब फोड़े फुंसी होता है ना, मवाद होता है, हैं, जब गैंग्रीन हो जाता है, सड़ता है, कोड़ी हो जाता है, एड्स हो जाता है, ये कैंसर हो जाता है, तो कितना दर्द होता है। अरे कीमोथेरापी करो क्या मर जाएगा वो कीड़े, टीबी हो जाता है, हड्डी के अंदर घुस जाता है, तो वो क्या मरेगा, जहर खा करके, कितना जहर डालते हैं तो भी तो मरता नहीं हो, वो बदला लेके छोड़ेगा। खट्टंग महाराज उस समय इतना दुर्वस्था में पड़े, ऋषियों के निकट शरणागत हुए, प्रार्थना करने लगे, तब बोले इन आत्माओं के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, भगवान के पास प्रार्थना करो, क्या कि जन्म जन्मांतर में आपसे बिछुड़ने के बाद भोग प्रवृत्ति की आई, इस भोग को पूरा करने के लिए सारा जीवन हम व्यस्त हो गए, हमारा ये भोग से छुटकारा तो मिले, धर्म किया अर्थ के लिए, अर्थ किया लाभ किया भोग करने के लिए, और जब भोग में असमर्थ हो गए तो मुक्ति के लिए पहुंचे, इससे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक शरणागत नहीं होगे भगवान के पास, तब तक छुटकारा नहीं है, और अपने किए हुए कर्म के लिए सब समय पश्चाताप नहीं। भक्ति ठाकुर क्या लिखते हैं, हमार जीवन सदा पापी रतो नहाई का पुण्य लेश, पर उद्वेग दियासी कत दियासी जीवर क्लेश, निज सुख लगे पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ पर दुखे सुखी, सदा मिथ्याभाषी दयाहीन स्वार्थ पर। भक्तिम ठाकुर एकदम कसोटी कस करके एकदम एक एक शब्द अर्थों को निकाल करके रखा। तो जब खट्टंग महाराज ऋषियों के पास शरणागत हुए, ऋषियों ने उनसे ये भोगों से छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, और अपने को भगवत सेवा में समर्पण करने के लिए उनको आदेश उपदेश निर्देश की। तो जो लोग साधु का भेष बना करके भोग करने के लिए ईंधनों को इकट्ठा करते हैं, वो कोई मिशनरी नहीं है, ये लोग राक्षस है, दानव है, यक्ष है, ये दुनिया का सर्वनाश करने वाला है, और एक के बाद एक स्पष्टीकरण किया कराया। तब धीरे 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 जनता शांत हुए, किंतु उनका कैसे प्रचार था, जैसे नित्यानंद प्रभु को बोला, क्या बोले महाप्रभु, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश, घरे घरे जाह मांग ये भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यह बोई आर ना बोलिबे बोलाइबे, दिवावसना आसी हमारे कहिबे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को बुलाया, इधर आओ, केवल बैठे बैठे महाराज अपने से नहीं होगा, जाओ जीवों के दर्द दर्द पर जाओ, प्रचार करो, सबको कृष्ण के भजन करने के लिए बोलो, कैसे भजन करेगा, शिक्षा दो, सबका कल्याण करो, जाओ। तो नित्यानंद बोले बढ़िया बात है, अच्छा अभी जाऊंगा, चल दिया। बोले किसके पास जाना है, जो विरोधी है, दुष्ट है, हाँ भगवान को नहीं मानते और राक्षस है, भोगी है, ऐसे उनके पास जाऊंगा। अच्छा तो अच्छा है ही है, उनसे बोलने की जरूरत क्या है, उनके पास नहीं जाऊंगा। हरिदास ठाकुर को लेके सीधा जगह माता के पास पहुंच गया। आप लोग जानते हैं वो मारने मरने को तैयार है तो नित्यानंद को डर नहीं है, खोपड़ी फोड़ दी तो उनको कोई परवाह नहीं है। बोले मेरे खोपड़ी फोड़ा तो कोई बात नहीं है, किंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तेरा जो कुछ करना है तो कर ले, गाली दे, मार ले, जो कुछ करना है कर ले, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को भगवान के चरणों में पहुँचा के ही छोड़ूंगा और तेरे कुप्रवृत्ति को छुड़ा के तभी मानूंगा। ये साधु का धर्म है, सत वस्तु में प्रतिष्ठित है, सत संदिनी शक्ति, वहाँ तक पहुँचाना है इनको। अब ये सिद्धेश्वर प्रभुपाद जी नाम तो दे दी, अब प्रचार शुरू किया। भारती महाराज के साथ सब समय प्रचार में जाते हैं। एक दिन भारती महाराज ने पकड़ करके ना, थोड़ा गलती के पीछे, ये कितना उम्र उस समय 30-32, और भारती महाराज ये भी लंबे चौड़े, ये मोटा तेजा, वो भी ऐसे ही, किंतु इतनी सी छोटी सी कोई गलती हुई कि नहीं, और डंडा लेकर पीट करके एकदम दुरुस्त कर दी, सब लोग प्रभुपाद जी पर जाकर शिकायत कर दी, भारती महाराज जी ने सिद्धेश्वर को इतना मारा है। किंतु सिद्धेश्वर ने जाकर के नहीं पूछा, प्रभुपाद जी कंप्लेन नहीं की। कुछ दिन बाद और प्रचार में जाना है तो प्रभुपाद जी पास आए प्रणाम करने, प्रभुपाद मैं आप आदेश दे दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं प्रचार में जाना चाहता हूँ। तो बोले किसके साथ जाओगे, तो भारती महाराज जी के साथ। तो प्रभुपाद बोले मैंने सुना उन्होंने तुमको बहुत शासन किया, कुछ मारा पीटा, पर उनका अधिकार है, यदि बड़े लोग यदि शासन नहीं करेंगे, उनका अधिकार हमने छीन लिया तो हमारे शुभकांक्षी कोई कौन होगा, हितकांक्षी कौन रहेगा, हैं कोई तो हमारा कल्याण करने के लिए सोचे, हैं उनका अधिकार को हम क्यों छीन ले, वो अपना समझते हैं तभी तो कुछ कहते हैं। अच्छा ही तो किया प्रभुपाद, आपकी कृपा है। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, अब प्रचार में गए। अब कहाँ जाते पता है, और कोलकाता में बड़ा बाजार के आगे चलोगे तो धर्मतला में एक मेट्रो सिनेमा है, और सिनेमा के चारों तरफ में होटल है, और जिसमें मछली के पकोड़े, मांस के पकोड़े और अंडा, आमलेट, कामलेट, क्या काकलेट, सारे दुनिया लाइन से बिकता है। और दारू के ठेका आज नहीं, वो अंग्रेज जमाना से चालू हो गया था, वो बंद नहीं हुआ आज तक। इतना गंदा एरिया, वहाँ कोई इज्जत वाले भी तो जा नहीं सकता, और ये पहुँच गए वहाँ प्रचार करने। दुकान में गया, और हमारे के पास समय नहीं है, तो आप लोग मंदिर आना, अभी हम लोग आए हैं, कुछ हरिकथा सुनो, कीर्तन करूँगा, बस वहाँ कीर्तन शुरू कर दी। अब बिगड़ गए और दार पी करके मतवाला होकर के नाचने लग गया, उनके पीछे पीछे ढाक ढोल पीट पीट कर तोड़ दिया। और हाजरा में महाराज जी ने भारती महाराज के साथ एक छोटा सा सेंटर बनाया था कोलकाता में। शाम को देखा गया मंगलारती के संध्या आरती के समय सब्र पहुँच गया, हैं जितना पीने वाला सब्र आ गया, और आकर के मैंने ऐसे उदम करने लगे, नाचने लगे, और ताकत तो है नहीं, कोई गिर पड़े, कोई लुढ़के, कुछ करे। फिर दूसरे दिन आ गया, क्या ले आया, एक टोकरी भर के पकोड़ा, किसके, मछली और मांस के, ऐसे उल्टा पुल्टा अंडा फंडा दुनिया भर के, हैं और सबको बांटने लग गए आरती के समय, आरती के बाद। तो बोले महाराज जी निकल आए, उस समय महाराज का संन्यास हो गया था, सिद्धांत भक्ति से सिद्धांति महाराज नाम हुआ, आ गए, आकर बोले भाई ये क्या कर रहे हो। बोले रामकृष्ण मिशन के साधु वो लोग हाँ रोज दिन तो माँ को भोग लगाते हैं और जो खाते हैं बांटते हैं, तो मैं भी सोचा मंदिर में ये सब बांटूंगा दूंगा, कुछ तो धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धर्मार्थ तो कुछ करना चाहिए। हमारा बड़े बड़े होटल है तो किस काम का, कुछ साधुओं को खिलाएंगे तभी तो हमारा कुछ पुण्य होगा। महाराज जी ने बैठाया, सबसे चरणामृत दिया हाथ में और फिर बोले देखो तुम्हारा मांस काट करके तुम यदि किसी को खिला सकते हो तो खिलाओ, किंतु दूसरे का मांस को क्यों तुम बेबात की दूसरे को पीड़ा दे करके उसके मांस को छीन करके लाए हो है? जबकि उन्होंने उदाहरण देना शुरू कर दी है? पहले पुराणों का कि यदि किसी को यदि उपकार करना है हैं, तो अपने मांस को उतारो, अपने खून दे दो, दूसरे को क्यों कष्ट दे रहे हो। फिर हरिकथा सुनाने लग गए, ऐसे आत्मज्ञान दे दी हैं, चिरकाल के लिए वो सुधर गया, बदल गया, वो फेंक दिया नाले में और मंदिर में प्रतिदिन आने लग गया। तो क्या करने लग गया कि मुझे हरिनाम दीक्षा दो, एकादशी करने लग गया। अब कुछ दिनों में इतना महाराज के नज़दीक के बने, चिरकाल महाराज के गाड़ी चलाना, प्रचार में ले जाना और रसी बनाना, ऐसे सेवक तो भूतन भविष्यति। और महाराज ने नाम दे दिया था सुदर्शन दास। बोले अब तुम कुदर्शन नहीं करने वाला, सुदर्शन करने वाला, अच्छे दर्शन करने वाला। यही नहीं, जब प्रभुपाद जी के ऊपर मायापुर में परिक्रमा से भीड़ पड़ी तब देखा यही नवद्वीप बाबा जी का स्मारकों का अड्डा खाना है, तो ठीक राधा बाजार बीचों बीच बाजार में आकर के अपना आश्रम खोल दिया और वहाँ से प्रचार शुरू कर दी, घर घर में गली गली में जाके। वो स्मार्त ब्राह्मण पंडित, हमारा मठ तो देवानंदगोली में मठ के शहर के बाहर था, एकदम जंगलों में, और ये एकदम शहर के बीच में घुस गए, बैठ गए। और जैसे कीर्तन शुरू हुआ आसपास के लोग, कोई मांस के टुकड़ा, कोई आंतड़ी भतड़ी, कोई मछली, ऐसे फेंकना शुरू कर दी। किंतु महाराज जी घबराने वाले नहीं, क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोल दी, डॉक्टर रख दिया। तो लोगों को चाहिए फ्री मेडिसिन हाँ, और फिर प्रसाद खिचड़ी खुद बना करके गेट के सामने बैठते, वो लाइन लग जाता कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, इतने तक खिचड़ी देते और होम्योपैथिक मेडिसिन फ्री देते। अब ये लोग धीरे धीरे मंदिर आने लग गए, कथा सुनने लग गए, एकादशी करने लग गए। आज जाकर के देखो नवद्वीप में कैसा चहल पहल हो गया, अर्थात कोई विरोधी तत्व तो रहा ही नहीं। इसके बाद परम गुरु जी ने देवानंद गोली मठ बनाया और भक्त रख श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने कोलरगंज में, वो भी एकदम जंगलों में, उन्होंने एक मंदिर बनाया। तो नवद्वीप में स्मार्टों के या बाबाजियों के बीच में, पंडितों के बीच में हैं, शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा गोलियों के इतिहास में उन्होंने सबसे पहले वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा। इसके पहले गोले संप्रदाय में बलदेव विद्यावसन प्रभु ने लिखा था संस्कृत में, किंतु हमारे अपने भाषा में कुछ नहीं था। फिर उन्होंने इस कैन कठ प्रश्न मंडुक मंडुक तैत्तरीय ऐत्तरीय छांदोग्य, ये 11 उपनिषद उसका भाष्य लिखा। फिर गीता का रसिक रंजन भाष्य लिखा। भारती महाराज जी ने बलदेव विद्यावसन प्रभु का टीका को अनुवाद किया, इन्होंने विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी का टीका का अनुवाद की। तब तक हमारे गोड़ीय संप्रदाय में कोई हमारा धरोहर नहीं था, क्योंकि स्मार्टों से बात करने के लिए कुछ तो पंडितों के साथ कुछ तो चाहिए। अब वेदांतों का अर्थ क्या है, वेदांत सूत्र का और श्रीमद्भगवद्गीता का और प्रश्न उपनिषदों का इन्होंने एक एक चीज़ों को प्रमाण करके भक्ति के अनुकूल सब रहस्य को निचोड़ को निकाल कर स्थापना की। और जब प्रचार में निकलते ऐसा नहीं कि हारने वाला, सुबह का निकला तो हाँ, अब रात को कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, यह नहीं सोचा। प्रभुपाद जी ने हाँ, जब देखा इतना उत्साह ही, यही नहीं, प्रभुपाद जी तो अंतर्जामी सब जानते थे, इससे पहले उनका सिद्ध स्वरूप नाम दे दी। और जब प्रचार करते थे कितने व्यक्तियों को ऐसे ले आए जो हाँ, प्रभुपाद जी के निकट जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक व्यक्ति आया वो त्रिपुराधीश के महाराज, तो महाराज को ले आया प्रभुपाद जी ने हरिकथा सुनने के लिए। वो आते समय प्रभुपाद जी के लिए सोने का गिलास ले आया, सोने का खड़ौन ले आया हाँ, और प्रभुपाद जी के लिए कितने उपहार लेके आया। तो प्रभुपाद जी बोले ये सोना चांदी हीरा जरा चाहिए नहीं, ये आत्मा को चाहिए। ये आत्मा किसी का नहीं है, ये महाप्रभु का है, नित्यानंद प्रभु का है, इनको दे दो, ये अपराकृत रस से परिपूर्ण कर देंगे। और इन जड़ वस्तु के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता, और न भगवान के लिए ये सम्मान आदर प्रदर्शन होता है, किंतु जब तक तो अपने को दे नहीं सकते हैं, अभिमान अहंकार को मोल लेना है कोई वस्तु को दे करके। तब प्रभुपाद जी भाषण सुना, इसके बाद बैठ गए कथा सुनने के लिए, करके 4 घंटा प्रभुपाद लगातार कथा सुना रहे, और उनका तो हाँ छटपट हो गया। किस लिए, वो हुक्का पीते थे गड़गड़ी, वो यहाँ वो वहाँ रह गया एक बहुत दूर 100 मीटर दूर उसका हुक्का, और वहाँ से सोने का पाइप यहाँ तक तो आएगा और उसको पियेंगे। उनका नौकर चाकर सेवक आए, वो तंबाकू सजा करके हुक्का सजा करके रख दिया, किंतु डर के मारे प्रभुपाद जी के सामने, क्योंकि उनका छटपटर हो रहा है। तो प्रभुपाद जी समझ गए, बोले ठीक है जाओ महाराज, तंबाकू पी के आओ, हुक्का पी के आओ, फिर आके शांति से कथा सुनो। बोले प्रभुपाद ये लास्ट है, गया पिया और तोड़ ताड़ करके सब सब गंगा में फेंक दिया। बोला अब जीवन में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इनका प्रचार कैसे था, एक बार पकड़ा किसी को, वहाँ गया कुचबिहार माता भंगा, वहाँ के रानी अंदर आया तो भिक्षा देने के लिए थाली में सजा करके बहुत सारा सामान लाया। बोले क्या, बोले पाखंडी एकदम सामने, पाखंडी धोबिन क्या कपड़ा धोने से मैले जाता है, दिल को धो, ये क्या दे रही हो, ये कोई भिक्षा है, बोलो आज से हरिनाम करूँगा, भगवत सेवा करूँगा, ये भिक्षा दो, ये अनाचार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, भजन करो, भक्ति करो। वो रानी कहते हैं हमारे जीवन में ऐसे डांट हमने कभी नहीं खाए, और न किसी ने मुझे बोलने की हिम्मत किया, आप साधु हैं कि भगवान के कोई निजन हैं, हैं? तब बोले हम कुछ लेने नहीं आया, हम तुमको देने आया, लो आज से भगवान की सेवा करोगे, हरिनाम करोगे, बोलो। और बैठ गए, छोड़े नहीं, कीर्तन शुरू कर दी। बोले आज से कीर्तन करोगे, यदि आत्मज्ञान लाभ नहीं किया, भगवत सेवा नहीं किया, तो जीवन पशु की तरह नष्ट करके क्या होगा। उन्होंने ये एक श्लोक की व्याख्या किया था, आहार निद्रा भयमय तुरंच सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो हिते शाम अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन किसी भी प्राणियों में किसी भी जोनियों में जाएंगे मिलेगा, और इसी के पीछे ही ये सृष्टि है। माया के जगत में 4 चीज के पीछे सारे दुनिया भागते हैं, तो आप पशु से बढ़कर क्या है, ऊपर क्या आपने कृतित्व लाभ की, मनुष्य शरीर धारण कर क्या किया है। यदि आत्मज्ञान लाभ नहीं की परमार्थ नहीं समझे, यदि भगवत सेवा और भगवत भजन नहीं किया तो क्या किया। बस इसका व्याख्या उन्होंने वो सुबह से संजय दत्त श्लोक की झड़ी लगा दी, करते रहे। रानी रोने लग गई, महाराज आज तक मुझे कोई ऐसा सोच नहीं था कि परमात्मा या आत्मा या भगवान कुछ और होते हैं। हम जानते थे ये शरीर में परमात्मा है, आत्मा है, हम जो कुछ इनको डालते हैं, अपने खाते पीते हैं, वो परमात्मा को मिलता है। और परमात्मा खा लेते हैं, छोड़ देते हैं तो मल मूत्र होकर निकल जाता है, परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं। तो आत्मा जो चाहते हैं मैं वही करती थी, हैं मछली मांगते मछली देती, मांस मांगते मांस देती। मुझे क्या मालूम थी परमात्मा आत्मा ये सब नहीं खाते या ये पाप है। महाराज जी ने लगातार 15 दिन वहाँ कुछ बिहार में माता भागा में प्रचार करते, ये सब जगह रानी कथा सुनने आती। इसके बाद में जगन्नाथपुरी में उन्होंने विशाल जगह लेकर के आश्रम के लिए दे दिया। तो रानी क्या था, राजघराना सब दे दिया कि इसमें आश्रम बनेगा, और अपने घर में भी आश्रम बना दिया। तो महाराज का ये नियम था, वो कहते थे लूटी तो भंडार मारी तो गेंडर, लूटना है तो लूटो नहीं तो हरि बोल के उठो। जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, उसके आत्मा को भगवान के चरण में समर्पण करूंगा तब तो आगे बढ़ूंगा। हजारों के घर में गया, हजारों जगह में गया, किसी का कुछ उपकार नहीं कर सका। एक को पकड़ा तो उसी को पहले उसके उद्धार करो, फिर दूसरी जगह जाना है। तो इससे प्रभुपाद जी कहते ये सिद्ध स्वरूप है, और आखिरी में वही रहा। किंतु कैसे थे, एक बार मैं 15 दिन के लिए हजरा उनके मठ में गया, देखा बाबा सुबह 4 बजे 3:30 बजे सारे ब्रह्मचारी उठ करके नहा धो करके तिलक तिलक करके आनी कानी करके सब मंगलारती में आए। मंगलारती के बाद सब लोग एक साथ बैठ गए कीर्तन में, गुरुजी भी बैठे हैं सिंहासन में, सेवक लोग बैठ गए। कैसे कठोर थे, सब ब्रह्मचारी चाहे स्वर है ताल है लय है मान है नहीं कोई बात नहीं, कीर्तन करना पड़ेगा। एक एक कीर्तन सबने करा। इसके बाद कथा करेंगे तो नाट मंदिर है, आधे मिनट लग गया। तुम्हें नेट क्यों लगा रहे, तो नेट के उधर में ब्रह्मचारी सन्यासी है और इधर में माताएं हैं, वो नेट के अंदर नहीं जा सकती। गौर आरती में मंगल आरती में खड़े होंगे तो नेट लगा हुआ है, वो बाहर रहेंगे, वो अंदर ब्रह्मचारी लोग रहेंगे। प्रसाद के समय कितना कठोर, अब ब्रह्मचारी लोग कैसे भोजन करेंगे, भगवान के 56 भोग बनेगा, वो प्रसाद सब बाहर के जनताओं के लिए और भक्तों के लिए बढ़ जाएगा। ब्रह्मचारी एक उबला हुआ सब्जी और भिक्षा का चावल, पूड़ी पकवान ये मिठाई हलवा 56 भोग खाएंगे। मैंने तो देखा नहीं, मैं 15 दिन लगातार रहा, एक दिन भी मैंने मैं देखता ब्रह्मचारी लोग बाद में बैठते हैं, केवल एक सब्जी है उबला हुआ, नमक एक दो हरी मिर्ची दे दी कि नहीं, और थोड़ा चावल वो भी भिक्षा का मोटा मोटा, और ठाकुर जी के लिए गोविंद भोग का चावल खीर पकौड़े कितने भोग, और सब भोग के थाली सब 3 दिन थाली प्रभुपाद जी के महाप्रभु के राधा कृष्ण के सब थाली सब बट गया। कितने लेने वाले प्रसाद दे देते, किंतु ब्रह्मचारी भिक्षा का अन्न ही खाएगा और ये सब्जी खाएगा। और कैसे थे, मानो आज इस मठ में निमंत्रण है, उस मठ में निमंत्रण है, निमंत्रण किया, किसी ब्रह्मचारी यदि कहीं चला गया निमंत्रण में, बोले वहीं रहेगा आएगा नहीं, मंदिर में नहीं घुसेगा, अब चलो जाओ, अब नहीं, अब मंदिर से कोई संबंध नहीं, हमसे संबंध नहीं, चलो। कथा करते थे, सब श्रोताओं को देखते थे। तो एक श्रोता, एक बड़ी बड़ी माता जी कथा सुनने आती, तो वो पूछा कल क्यों नहीं कथा सुनने, तो मैं दूसरे मठ में गई थी, अब आज से वहीं जाओगे, यहाँ नहीं आओगे अब, ब्रह्मचारी को अप कोई निमंत्रण आया तो अपने साथ किसी को ले गया तो ले गया, या तो कोई नहीं जा सकता एक मठ से दूसरे मठ में। बोले तुम कहीं गया, किसी की सलाह, किसी कथा, किसी के कुछ सुना, तुम्हारा अंदर श्रद्धा गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, मंदिर के सेवा के प्रति ममता गया, अब नहीं लौटेगा, इससे अच्छा है तुम जाओ, गृहस्थी बनो, कुछ करो, उस मठ में जाओ, कुछ भी करो, अब यहाँ नहीं घुस नहीं दे। और मंदिर में कैसे हैं, इतना साफ सुथरा, आज भी यदि जाएंगे कोई देखेंगे, वो सब मंदिर में छत के ऊपर में फूल का बागान होगा, और वो बागान इतना सुंदर होगा, सीजन के सभी फूल होंगे, वो फूल उठा करके भगवान के माला रोज दिन बनाया जाएगा, और फिर बाजार से भी लाएंगे। महाराज जी कैसे नियम था, कोलकाता फूल बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है, फूल खरीद करके फ्लाइट बुक करके और जगन्नाथपुरी के लिए फूल भेज देते थे, हैं गोपीनाथ, खिचड़ा गोपीनाथ, उनका चंदन लगता है और चंदन इकट्ठा करके भेज देंगे, पोशाक चंदन यात्रा में जगन्नाथ जी का 21 दिन का चंदन यात्रा 21 पोशाक चलता है। भले ही ब्रह्मचारी कितना कष्ट उठाए किंतु सेवा प्राण। एक दिन लास्ट समय में पुरी में पहुंचा, उस समय पुरी में थे महाराज जी, एक मठ था पुरी में, एक नवद्वीप में, कलकत्ता में, एक मठ था वृंदावन में, फिर वो चैतन्य मठ को दे दिया था, अब एक दूसरा मठ हुआ है राधा वल्लभ जी के पीछे, चैतन्य मठ वाले का दो था तो उन्होंने फिर दोबारा अभी कुछ दिन पहले उनको दे दिया, महाराज तो पधर गए, शिष्यों को दे दिया। और शिष्य भी कैसे सख्त कट्टर है, सेवा प्राण है, ममता कितना है, कोई भी अपना गुरु से और भगवान के सेवा को छोड़ करके इधर उधर जाएंगे संभव नहीं है। तो मैं लास्ट समय में गया तो देखा क्या, शाम के समय महाराज जी बहुत भारी शरीर था, इसी चेयर में बैठे हैं, कम से कम 2 घंटा तक खड़े खड़े देखता रहा, महाराज जी कैसे स्मरण करते हैं, आँख बंद है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अभी जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रभु के चरण चिन्ह में जाकर के पहुँचा हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, पुष्पांजलि चंदन में तुलसी चढ़ाता हूँ, एक एक करके स्मरण करते रहे, गंभीरा सिद्ध बकुर टोटा गोपीनाथ हरिदास ठाकुर समाधि हैं, एक एक जगह महाराज जी प्रणाम करते रहे, और तुलसी चंदन कहीं फूलमाला कहीं भोगराग करते 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 क्षेत्रमंडल गौड़मंडल ब्रजमंडल कम से कम 2-3 घंटा तक महाराज जी स्तुति करते रहे, और सब जगह में श्लोकों के द्वारा प्रार्थना करते रहे। सेवक लोग हाथ का पंखा कर रहे हैं, और वो कभी आँखों से आंसू बरस रहा है, कभी तो पसीना छूट रहा है, हैं किंतु सेवक लोग जानते हैं, सुबह भी मंगल आरती के पहले कम से कम 2-3 घंटा महाराज जी ऐसे ही समस्त प्रभुपाद जी की पदांकित भूमि, महाप्रभु के पदांकित भूमि, क्षेत्रमंडल गोलमंडल ब्रजमंडल समस्त तीर्थों में जाते थे। मैं देख करके उस दिन से मेरे को होश संभाले कि कैसे ममता है, और प्रत्येक वैष्णव का नाम लेकर के कितने महाप्रभु के द्वादश गोपाल सृष्टि महंत अष्टकबीरा सड़ गोस्वामी वो नहीं आज तक हैयाचेन हैबेन प्रभुर जत दास, सवार चरणबंध दंत करी घास, दांतों के नीचे तिनका दबा करके सब वैष्णव को नाम लेकर के प्रणाम करना और स्तुति करना, ये साक्षात देखने को नहीं मिलेगा। कह सकते हैं बहुत कुछ आचरण में नहीं, किंतु देखा महाराज जी कैसे प्रणाम और स्तुति करते थे, ऐसे ही सेवक लोग। और कोई भी भक्त डिवोटी आया, गृहस्थी हो चाहे कोई भी हो, सेवा प्राण। और जब किसी को संन्यास देना होगा ना, तो उनको पहले ही प्रतिज्ञा कराएंगे, अब तुम संन्यास लोगे, सब कुछ त्याग दोगे, तो अब से तुम्हारा दायित्व है, जिम्मेदारी होगा क्या? पहले लैट्रिन बाथरूम साफ करोगे, बर्तन माजोगे, परिवेशन करोगे, रसोई बनाओगे, भिक्षा में जाओगे, तुम्हारे 24 घंटा में एक मिनट काल भी और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। संन्यास का मतलब मैं संपूर्ण रूप से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, भगवान के लिए समर्पण कर चुका। अब भगवान के लिए समर्पण करके ऐसमुज करेंगे, दो घंटा सो जाएंगे, दो घंटा खाने में लगा देंगे, दो घंटा भगव करेंगे, बातचीत करेंगे इससे उससे, हैं नहीं, हरि कीर्तन करो, नहीं तो सेवा करो। उनके मंदिर में पूरा मंदिर सुंदर सजा हुआ है, 10 अवतार, महाप्रभु की लीला, कृष्ण लीला और सब रामलीला, कोई भी आया दर्शनार्थी, सेवक चला जाएगा एक जने, उनको समझाएंगे ये रामलीला का एक एक वो मूर्ति है, छवि है, क्या है ये गौरलीला, क्या है कृष्णलीला। सब लोग पूरा मंदिर दर्शन कराते कराते कम एक दो घंटा लग जाएगा। आखिरी में प्रसाद देंगे, तुलसी देंगे, हैं, और उनको कहेंगे कि मंदिर की सेवा के लिए यदि आपको इच्छा हो तो कुछ दे दो। अब एक व्यक्ति के पीछे जब दो घंटा कोई टाइम लगाया, उनको इतना स्नेह किया, हरिकथा सुनाया, तो उनका चित्तवृत्ति कैसे होता है? मैं बचपन में कितना हुआ था, 8-9 साल का, तो हम एक दिन अपने बाप के साथ पहुंच गया था राधा बाजार मंदिर दर्शन करने, गंगा स्नान करके दर्शन करके आना था, तो मंदिर देखा, इतना सुंदर कृष्ण है, महाप्रभु है, राधारानी और लीला है, तो सब दर्शन सुन कराया, तो उन्होंने 1 रुपया प्रणामी दे दी, 1 रुपया बहुत सारा होता था, दे दिया, उन लोगों ने प्रसाद दिया, वो प्रसाद खा करके तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा सुंदर स्वादिष्ट, जितने गोड़ी मठ है वहाँ का कुछ प्रसाद होता है ठीक है, किंतु जब तक कोई सिद्धांति महाराज की मठ का प्रसाद नहीं खाया हो तब तक वो नहीं समझ सकता है प्रसाद किसे कहते हैं। एक बार यदि राधा बाजार में जाए या पुरी जाए या कोलकाता में जाए, हैं, आज भी नियम है, पहले से 10 दिन से 20 दिन से बुक हो जाता है कि आज मैं एक पत्तल लूँगा, तो पहले तो थोड़ा बहुत कुछ लेते थे, और तो मैं सुना 100 रुपया लेते हैं या कुछ लेते हैं, हैं, उसमें कितना आइटम होंगे, थोड़ा 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 सा करके देते देते भी एक टिफिन लंच बॉक्स इतना बढ़ जाएगा, हाँ, और कोलकाता में तो यही नहीं, उसी से ही उनका मठ चल जाता है, इतना प्रसाद के लिए लोग भूखे हैं, और जो एक बार प्रसाद खाता है ना, वो जीवन में वो नॉनवेज कभी नहीं खाएगा, हो ही नहीं सकता, ऐसे स्वादिष्ट कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे सुगंध है, क्योंकि ममता है, प्रीति है। आज यदि ममता नहीं है, यही दाल चावल है, यही साग सब्जी है, मार मारे फेंकता है, कोई छूता भी नहीं है, और वहाँ के एक एक किनका के पीछे लाइन लग के, आप होली के दूसरे दिन जाएंगे, गौर पूर्णिमा के दूसरे दिन, कम से कम इस समय में 5 किलोमीटर देवान्द गोल्डे मठ से लेकर के शायद वो पड़ा मतला तक दोनों तरफ लाइन लगा हुआ है। कब से? सुबह से सब लोग कटोरी लेके, बड़े बड़े घर के सारे लोग, क्यों? एक महापुरुष के प्रसाद मिलेगा। कितनी जगह बढ़ता है, वहाँ का तो कोई जाता नहीं, मैं तो देखा बहुत जगह में बना बना कर छोड़ देता है, कोई जाता नहीं, किंतु क्यों? भगवान के लिए ऐसा प्रीतियुक्त होकर के कुछ समर्पण करते हैं, और भगवत प्रसाद को जो लोग ग्रहण करते हैं तो वो अनुभव करते हैं, उपलब्धि करते हैं, उसका आकर्षण है। इसलिए तो महाराज जी का नियम था, पाठ में बैठेंगे तो बस कथा सुनाएंगे, हैं, कैसे कथा सुनाएंगे, कीर्तन करेंगे, व्याख्या करेंगे, कथा सुनाएंगे बड़े प्रांजल सरल भाषा से। और हमारे परम गुरु महाराज क्या करते थे, जब भी कोई भी अनुष्ठानों का बड़ा बड़ा उत्सव होता तो महाराज को सभापति कर देते। जब परम गुरु महाराज अप्रकट हो गए तब खुद सिद्धांति महाराज आकर के हमारे परम गुरु जी की समाधि व्यवस्था की, और हमारे आचार्यों का संविधान बनाया और आचार्य प्रतिष्ठा किया और नियम कानून करके सब, और अपने भी जाने के पहले हैं ऐसी व्यवस्था बना के आज तक मठ में कभी भी कोई झगड़ा झंझट कोई ऊंचा नीचा बात भी नहीं हुआ महाराज जी जाने के आज तक भी नहीं, और कोई भूतन भविष्यति। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं है ना तब तक व्यक्ति हाँ पागल की तरह सड़क में डोलता है। आज किसी के यदि आत्मज्ञान लाभ हो गया तो क्यों या दुनिया के लिए लड़ मरेगा। ओ महाराज जी एक श्लोक की व्याख्या करके सुनाते थे, नित्यात्ति दिन बीतते न दुर्लभ न आत्ममृत्यु ना गृह पवित्र पशु भी काप्रीति साध्य चली। बोले कुत्ते को एक हड्डी के टुकड़ा मिला लेके भाग रहा है, उसको 10 कुत्ता लग गया और काट रहा है, जब हड्डी के टुकड़ा छोड़ दिया एक चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया तो फिर कुत्तों में मारपीट लग गई। तो कहते दुनिया के कोई भी वस्तु पकड़ लो रख लो झंझट है, छोड़ दो परा शांति है, तो काय को मरे। इसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नित्यार्थी दिन बीतते न दुर्लभ में न आत्ममृत्यु ना, आत्ममृत्यु का एक ही कारण है कि आत्मा का मृत्यु होगा। क्यों किससे, नित्यार्थी प्रद दुख प्रद दिन बीतते न, ये जबकि ये संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं बस ये कलह शुरू हो गया, कलिम कलम लाती शुरू हो गया और कुछ नहीं है तो क्या करेगा, चुपचाप इससे वो कुत्ता खड़ा हुआ है हैं देख रहा है पूछ दबा करके, उसके बाद कोई नहीं आ रहा है, अब उसको कोई नहीं कुछ बोलता है। इसलिए कहते गृह आपत्त पशु भी घर है कुटुंबी है कितना उल्टा उल्टा बोलता है, वो उससे प्यार करता है उससे बोलता है हमसे नहीं बोलता है, हम उसको देता है हमसे नहीं देता है, कितनी कलह भाई। इससे आत्ममृत्यु का कारण स्वरूप है। तो महाराज जी बोलते थे इन वस्तु को मत देखो, देखो गीता पढ़ो। इससे उन्होंने तीन भाग में पहला खंड द्वितीय तृतीय खंड में गीता को रसिक रंजन भाष्य लिखा। वेदांत सूत्र इतना सुंदर प्रांजल भाषा में 5 खंड में उन्होंने प्रकाश किया। श्रीमद भागवत का उद्धव संदेश उन्होंने लिखा, क्या उद्धव संदेश है। अब मैं सोचता हूँ दामोदर मास में ही अभी दामोदर अष्टक के समाप्त होने जा रहा है तो अब उद्धव संदेश महाराज शुरू करेंगे। क्या उद्धव संदेश है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि उद्धव जी तो हम जानते कि द्वारका से आए ब्रज में, किंतु कृष्ण ने उनको क्या पाठ पढ़ाया कैसे भेजा ये पता अत पता नहीं था और कैसे ब्रज में पहुँचे ये सब अत पता नहीं है। भागवत में तो केवल इतना ही है गच्छ ब्रज सौम्यम उद्धव सौम्य तुम जाओ ब्रज में जाओ, बस इतनी बात ही है। किंतु महाराज जी ने उसकी कितना प्रमाण के साथ व्याख्या किया है वो नाम उद्धव संदेश इतना मोटा भागवत की तरह ही है एक उद्धव संदेश। इसलिए उन लोगों का जो ग्रंथ है हृदय का भावों को सब मूर्तमान रूप में छोड़ दिया। हम लोग मठ में जब आए तो महाराज जी ने हम लोग को ये भगवत गीता का अध्ययन कराया था, तो हमने देखा चक्रव्यूह टीका कैसे अनुवाद है और कैसे श्रीमद् भागवत के चक्र ठाकुर जी के अनुवाद 108 टीका भागवत के हमारे मुतमनाट में था। तो महाराज जी बोलते थे देखो आचार्यों के वैशिष्ट्य देखो कैसे सुंदर सुंदर रसमय व्याख्या है, ये नहीं कि शून्यवाद मायावाद निराकारवाद भक्ति के रस कैसे प्रवाह होता है और कैसे ये पृथ्वी के रस कितने हैं। महाराज ने एक उदाहरण दी, बोले देखो ये पृथ्वी का रस है, फूलों के पेड़ है, किसी फूल सफ़ेद हो रहा है कोई गुलाबी हो रहा है कोई लाल हो रहा है सुगंध है, किंतु हम लोग तो फूल ही फूल ले सकते हैं किंतु मधु नहीं ले सकते, और मधुओं की फूल में आते फूल नहीं ले जाते, फूल के मधु को लेके जाते हैं, और वो मधु सूखता भी नहीं है कड़वा भी नहीं होता जहरीला नहीं होता, फूल सूख जाएगा झड़ जाएगा सुगंध चला जाएगा वो मधु कहीं नहीं जाएगा, और वो रख करके सबके कल्याणकारी करते हैं। ऐसे शास्त्रों के जो निचोड़ है साधु लोग ही ग्रहण उसको संग्रह कर सकते हैं और साधु लोग ही बांट सकते हैं, है? ये मधुर रस कितना सुंदर है। तो महाराज जी व्याख्या करते थे, है? कथा और ऐसा गंभीर स्वर, ऐसा आवाज़, आज भी यदि कैसेट सुनेंगे तो पता पड़ेगा। एक हमारे महाराज थे उड़ीसा में, गौर गोविंद महाराज, वो भी भाषण देते समय कैसे, कभी तो रो रहे हैं इधर, कभी तो शोर मचा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वज्रपात हो गया, सिर्फ आकाश बादल फट जाएगा, इतना आवाज़। ओ श्रीधन जी महाराज तो बाबा, उस समय स्पीकर फिकर की तो कोई मतलब ही नहीं था, एक था ग्रामाफोन, ये रिकॉर्ड जैसे घूमता था, ये स्पीकर फिकर उस समय नहीं था, माइक था एक, किंतु वो माइक की भी ज़रूरत नहीं, उन लोगों के पास इतनी ताकत है और इतना वॉयस है बोलिया में, तो इसलिए महाराज का आविर्भाव दी थी कार्तिक के महीना में, आज की पंचमी तिथि महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। इस महीना में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी का आविर्भाव गया, अभी बीच में बहुत है, आज भी कितना तिथि है, प्रभुपाद जी परिकर का पूरा महीना है, किंतु हम तो विशेष विशेष दो चार तिथियों को चेष्टा करते श्रवण कीर्तन करने की, किंतु प्रतिदिन ही है, किंतु यदि कहो दामोदर लीला छोड़ करके वहाँ पहुँच गए तो क्या मिलेगा, दामोदर रुष्ट नहीं हो जाएंगे, हैं? तो दामोदर अपने परिकर में समाये हुए हैं, वो अलग नहीं है, और परिकर छोड़ दो तो राजा यदि है, राज्य है, प्रजा है, तभी राजा है, और यदि प्रजा ही नहीं है तो राजा क्या है, यदि भक्त नहीं है तो भगवान क्या है, भगवान है तो भक्त भी है, भक्त है तो भक्तों की गोष्ठी में भगवान भी है, तो इससे भगवत परिकर है, भगवान विराजमान है, इससे वैष्णव के गुणगान है सबसे कल्याणकारी। तो आज यहीं तक रखते हैं, शाम को हम लोग फिर सुनेंगे, काल से फिर हम लोग, अब क्या गोपाष्टमी आ गया, आज पंचमी है, छठ सप्तमी, फिर गोपाष्टमी आ रहा है, गोपाष्टमी के बाद अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के बाद में फिर कृष्ण को अक्रूर जा रहा है लेने के लिए, वो अक्षय नवमी के दिन ही पहुँच गया, उनको दशमी को ले आया, और दशमी को ही वहाँ दिखाते हैं कंस को मार दिया, एकादशी को तीन मन की परिक्रमा किया, अब तो एक के बाद एक उत्सव ही उत्सव के महीना पूरा है, तो हम लोग फिर काल सुनेंगे, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।